Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yache dashat bodhum prak sharirasya visras sasaha. ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके तत्व को जानने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है शरीर। आत्मसत्ता को जानने के लिए वस्तुतः किसी भी अन्य साधन उपकरण की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें दूसरे देश में, दूसरे काल में, दूसरे वस्तु के रूप में होती हैं, उसको प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। जो दूसरे देश में है, वहां तक पहुंचना है, साधन की जरूरत है। दूसरे काल में है, उसको प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता है। दूसरे वस्तु के रूप में है, उसको प्राप्त करने के लिए भी साधन की आवश्यकता है। इसलिए वेदांत में आत्म तत्व को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए किसी बाहर के साधन की आवश्यकता नहीं है। ये साधन निरपेक्ष है। लेकिन इतनी बात जानने के लिए साधन की आवश्यकता है। यहां जानना है और जानने के लिए साधन की आवश्यकता है। यहां आत्मा को पाना नहीं है, केवल जानना है। और आत्मा से अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें श्रद्धाजन्य हैं। मैं हूं इस बात को जानने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे अलग कोई चीजें हैं, उसको जानने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। आपको भगवान को जानना है, ईश्वर को जानना है, तो भी वहां श्रद्धा की जरूरत है। आपसे अलग जो भी चीजें हैं, उसको जानने के लिए श्रद्धा की बहुत जरूरी है। आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो दूसरे के अस्तित्व को जानना, उसको मानना असंभव सा है। इसलिए दुनिया की सारी चीजें श्रद्धाजन्य हैं। जो आपके दृष्टि का विषय नहीं है या जो आपके दृष्टि का विषय है, उन दोनों चीजों को जानने के लिए श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। आप मेरे सामने हैं, दृष्टि के विषय मालूम पड़ रहे हैं। जितने आम दृष्टि के विषय हैं, उतना तो मैं मान लूंगा, लेकिन आपका बहुत सारा हिस्सा दृष्टि का विषय नहीं है। आप जितने दृष्टि के विषय हैं, उससे लाखों गुना दृष्टि के विषय नहीं है। आपका केवल रूप, आकृति, सौंदर्य, नाम, बहुत कुछ और बहुत थोड़ा मेरी दृष्टि का विषय है, लेकिन आपके अंदर जो आपका मन है वो मेरी दृष्टि का विषय नहीं है। आपके अंदर बुद्धि है ये मेरी दृष्टि का विषय नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी चीजें है या नहीं है, या है तो वो समर्थ है कि नहीं, वो कितनी समर्थ है ये मेरी दृष्टि का विषय नहीं। आप कितने बुद्धिमान हैं ये मेरी दृष्टि का विषय नहीं है। मैं नहीं जान सकता हूं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, आपका मनोबल कितना मजबूत है, आपके मन में कितनी शक्ति है, ये मैं नहीं जान सकता, ये मेरी दृष्टि का विषय नहीं है। और जहां दृष्टि का विषय नहीं है, जो पदार्थ जो भाव दृष्टि का विषय नहीं होती है, वहां श्रद्धा की जरूरत नहीं। आपके पास मन है ये मेरे लिए श्रद्धा है, मेरे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है। आप बहुत बुद्धिमान है ये मेरी दृष्टि का विषय नहीं, मेरी श्रद्धा का विषय मान रहा हूं मैं। और ये जो तन है, इस तन में भी जो आंतरिक व्यवस्थाएं, इस शरीर के अंदर बहुत सारी जो तकनीकी चीजें हैं, वो चीजें भी मेरे दृष्टि का विषय नहीं है, वो केवल श्रद्धाजन्य है। आपके लिए स्वर्ग हैं, लोक लोकांतर हैं, ये सब दृष्टि का विषय नहीं, सृष्टि का ये विषय नहीं, ये तो केवल श्रद्धा का विषय है। शास्त्र ने कहा, हमारे वरिष्ठ जनों ने कहा, इसलिए मान लेते हैं। ये दुनिया की सारी चीजें श्रद्धा जन्य है, यहां तक कि आपका जन्म और मृत्यु भी श्रद्धा जन्य है। आप पैदा हुए ये आपकी दृष्टि का विषय नहीं है, आप मरेंगे ये भी आपकी दृष्टि का विषय नहीं है। आप पैदा हुए ये आपने थोड़ी देखा है, दूसरे ने देखा, आप दूसरे का पैदा होना देख लेते हैं, आप दूसरे को पैदा होते हुए देख लेते हैं, लेकिन आपने अपने को स्वयं को पैदा होते हुए देखा है क्या? ये तो संभव नहीं है। स्वयं व्यक्ति अपने पैदा होने को देख नहीं सकता है, स्वयं व्यक्ति अपने मरने को कभी देख नहीं सकता है, क्योंकि देखने की प्रक्रिया का आरंभ जन्म लेने के बाद में है। देखने की दृष्टि जन्म के पहले और जन्म के काल में नहीं है, जन्म लेने के बाद में। आपकी आंख कब खुली? अरे आंख कब खुली नहीं, आपके पास आंख कब आई? पैदा होने के पहले, पैदा होते समय कि पैदा होने के बाद? पैदा होने के बाद बहुत बाद आंख खुली, बहुत बाद जानने की प्रक्रिया शुरू हुई, और जानने की प्रक्रिया ही आपके पास नहीं है तो आप जानेंगे कैसे? इसलिए न च स्वजन्म नाशम वा दृष्टुम अर्हति कश्चन। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म को नहीं जान सकता है, और ऐसे हमारे मरने को भी हम नहीं जान सकते। आप सोए हैं और किसी ने आके आपको आवाज लगा दी, भैया सो गए क्या? और आपने बोला नहीं, या आपने बोला हां, इसका मतलब अभी आप सोए नहीं हैं। आपकी आवाज, चाहे भले ही मैं सो रहा हूं ये हो, लेकिन आप समझ लेते कि ये सोया नहीं है, यदि सो जाता तो वो जवाब देने के लिए व्यक्ति बचता नहीं है। सोने के बाद आप ये सोने के बच कहने के लिए भी नहीं बचते कि मैं नहीं सो रहा हूं, और आपका ये कहना कि मैं नहीं सो रहा हूं ये सिद्ध करता है कि आप अभी सोए नहीं हैं। सो रहा हूं भले आप कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाला समझ लेता है कि सोने की तैयारी में है, अभी सोया नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं मर रहा हूं, मैं मर गया, कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं मर गया, तो आप क्या समझते हैं? ये अभी मरा नहीं है, क्योंकि यदि मर जाता तो ये मैं मरा ये बोलने के लिए भी नहीं बचता। कौन जानता है अपनी मृत्यु को? कौन जानता है? क्योंकि जानने की सारी प्रक्रिया मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। जब आप शेष हैं, मृत्यु को जान सकते हैं, उस समय आप मरे नहीं हैं। जब आप हैं तो आप मरे नहीं, और जब आप मर गए तो आप नहीं हैं, तो कौन जानेगा मृत्यु को? कौन जानेगा? जानने की सारी प्रक्रियाएं, जानने के सारे उपकरण मृत्यु के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप न अपने जन्म को जानते हैं और न आप अपने मरने को जानते हैं, ये सुना है। इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं आप कब पैदा हुए। बहुत सारे लोगों के जन्म तारीख के बारे में विवाद होता है, बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में। आप कहां पैदा हुए, आप किस समय पैदा हुए, ये आपको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम, आपने सुना है केवल। ये श्रद्धाजन्य, आपने विश्वास किया अपने माता पिता के ऊपर, शब्द के ऊपर, मैं पैदा हुआ हूं, और आप विश्वास कर रहे हैं मैं मरूंगा। ये श्रद्धाजन्य, यदि आप अपने दृष्टि पर भरोसा करते हैं, केवल प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली ही वस्तु को मान लेते हैं, तो आपको अपने जन्म और मृत्यु को भी नहीं मानना चाहिए फिर, क्योंकि वहां श्रद्धा है केवल, आपकी दृष्टि नहीं है। और सत्य तो यही है, आपके होने को छोड़कर दुनिया में सारी चीजें श्रद्धाजन्य हैं। लेकिन आपको अपने को यदि जानना होना, तो आपका जो होना है वो श्रद्धाजन्य नहीं है। मेरा होना आपके लिए श्रद्धाजन्य है, लेकिन आपका होना आपके लिए श्रद्धाजन्य नहीं। आप ऐसा थोड़ी सोचते हैं मैं हूं, ऐसा मेरा विश्वास है, श्रद्धा है, नहीं नहीं, आपका होना ये श्रद्धा का विषय नहीं है, ये आपका होना स्वसंवेद्य है। आपका होना स्वसंवेद्य है, तो आपको जानना है कि आपको अपने को पाना है। आपको अपने को, स्वयं को केवल जानना है, यहां निर्मित नहीं करना है, यहां कुछ जुटाना नहीं है। आपको बाहर की चीज को लेना हो तो आपको साधन जुटाना होगा, आपको क्रिया करनी पड़ेगी, और बहुत कुछ करने के बाद वो उस बाहर की चीज आप ले लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, खरीद लेंगे, पैदा करेंगे, उसको दूसरे वस्तुओं के रूप में बदल देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन मानो कि वो चीज आपके पास है, वो आपके पास है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना चश्मा थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, माथे पर चढ़ा लेते हैं, और भूल जाते हैं कि वो चश्मा कहीं खो गया। इधर उधर देख लेते हैं, फिर मालूम पड़ा हो ये तो यही है। तो आपको अपना माथे पर चढ़ाया हुआ चश्मा मिल गया, कहां मिला? अरे जहां था वहीं मिला, आपने कहीं जाके उसको थोड़ी पाया, उसी देश में उसी समय वहीं वो था, लेकिन मध्य में थोड़ा भ्रम पैदा हो गया था कि वो नहीं है, खो गया है ऐसा। तो ऐसे अपने को प्राप्त करना ये कहीं दूसरे देश में जाके नहीं है। एक बहुत मजेदार उदाहरण आया है श्रीमद् भागवत में, जब हिरण्याक्ष का वराह के रूप में भगवान ने उद्धार किया तो उसके जो भाई हिरण्यकश्यपु, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भगवान को मारूंगा, मैं बदला लूंगा। ये उदाहरण बहुत मजेदार है, हमारे जितने भी पुराण हैं ना आपके लिए बहुत कुछ रहस्य की बातें बता देते हैं। हम कहानियों में उलझ जाते हैं, कहानियों से सीख नहीं पाते हैं। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं पुराण आपको सिखाते हैं जीना कैसे चाहिए, और इतिहास आपको सिखाता है कि लोग कैसे जीते थे। घटना प्रधान इतिहास होता है, लोग कैसे जिए, लोग कैसे हुए, इसका वर्णन इतिहास करता है। लेकिन पुराण ये वर्णन नहीं करता है, पुराण वर्णन करता है आपको वर्तमान में कैसे जीना चाहिए, आपको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए पुराणों की कथाओं में उलझना नहीं चाहिए, पुराणों से हमें सीख लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को मारूंगा, अब भगवान को मारने के लिए भगवान का मिलना जरूरी है ना। भाई किसी भी चीज को आप मारना चाहते हैं तो पहले वो मिले, और तब मिले जब उसको प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए खोजे। अब वो हिरण्यकश्यप शक्तिशाली, वो खोजने लगा, भगवान को खोज रहा था वो, और वो भगवान को पाने के लिए नहीं खोज रहा था, वो भगवान को खोने के लिए खोज रहा था वो। और वो पाना भी चाहता था लेकिन खोने के लिए, खत्म करने के लिए, वो भगवान को खत्म करना चाहता था। अब वो खोजने लगा, बहुत शक्तिशाली था, भगवान घबरा गए। भगवान ने सोचा कि ये ठान लेता है, ये जीव जो ठान लेता है ना, ये हिरण्यकश्यपु जीवात्मा का प्रतीक है। आपके अंदर भगवान ने ऐसी एक शक्ति डाल रखी है कि आप एक बार ठान ले, मन में एक बार आपके आ जाए कि ये चीज मेरे को प्राप्त करना है, उसके बाद फिर ये जीव प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस जीवात्मा की बहुत सारी चीजों से भगवान भी घबरा जाते हैं, और ये पता नहीं ये कौन सी चीज को प्राप्त करने के लिए संकल्प ले। भगवान भयभीत हो गए और बचने के लिए छिपते भागने लगे। कहते कि भगवान जहां भी छिपे रहते वहां जाके हिरण्यकश्यपु ढूंढ लेता, ओ आया आया आया, भगवान वहां से भागते, हरिद्वार में छिपे वहां पहुंच गया, बद्री नारायण छिपे वहां भी पहुंच गया, नैमिषारण्य में छिप गए भगवान वहां भी पहुंच गया, और रामेश्वरम पहुंच गया, समुद्र में छिपा वहां भी पहुंच गया, द्वारका, अरे सारे दुनिया के जितने नक्षत्र तारांगन चंद्रमा सब जगह पर पहुंच गया। भगवान ने सोचा अब बचने का क्या उपाय है, बचने का क्या उपाय है। भगवान समझ गए एक चीज ऐसी है, यहां मैं छिप जाऊं तो मैं कभी नहीं मिलूंगा उसको और मैं सुरक्षित रहूंगा। और उसी समय भगवान जाके हिरण्यकश्यपु के हृदय में छिप गए, और वो हिरण्यकश्यपु दुनिया में खोजा उनको, लेकिन वो अपने हृदय में खोज नहीं पाया। दुनिया में खोजा लेकिन हृदय में नहीं खोजा, और इसीलिए भगवान उसको नहीं मिल पाए और भगवान बच गए। कहानी बड़ी मजेदार है। ये कहानी आपको बहुत कुछ समाचार देती है, मैसेज देती है, बहुत बड़ी समझ देती है, सीख देती है। हम भगवान को खोज रहे हैं, बहुत जगह पर खोज रहे हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वर, अरे दिन भर तो वर्षों महीनों लगाते हैं हम भगवान को खोजने, उपवास में खोज रहे हैं। नौ नवरात्रियां आई, बोले नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करेंगे। अब उपवास में भगवान को खोजेंगे, माने उपवास करने पर भगवान मिल जाए। हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल के भगवान को खोज रहे हैं, पैदल चलने से भगवान मिल जाए। दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, उससे भगवान मिल जाए। ये सब कुछ ये जीवात्मा की जो कोशिश है ना, ये उसी को प्राप्त करने के लिए। हमारे एक प्रोफेसर थे, गुरु, बहुत एक मजेदार बात बोलते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, डॉक्टर सुधांशु शेखर शास्त्री जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के विद्वान। वो अक्सर कहते थे, स्वामी जी इस जीवात्मा में जो व्याकुलता है, जो अशांति है, चाहे वो जीव धार्मिक हो चाहे अधार्मिक, चाहे आप योगी हो चाहे भोगी, चाहे आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त, आप कहीं भी क्यों ना हो, आपके अंदर जो व्याकुलता है, आपके अंदर जो अतृप्ति सी है, अशांति है, वो अशांति परमात्मा के मिलने के लिए है। और जब तक वो परमात्मा नहीं मिलते हैं, तब तक आपके भीतर की अशांति मिटने वाली नहीं है। ये बात अलग है कि आपको भी मालूम नहीं है कि ये व्याकुलता क्यों है। हम खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं, हम भोग में खोज रहे हैं, हम योग में खोज रहे हैं, हम भोजन में खोज रहे हैं, हम उपवास में खोज रहे हैं, हम रूप सौंदर्य आकृति में खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? हम उसी परमात्मा को खोज रहे हैं। बेचैनी, ये जो बेचैनी है ना, ये परमात्मा के मिलने की बेचैनी है। और उस बेचैनी को दूर करने के लिए फिर आप क्या करते हो? यहां होगा, वहां होगा, यहां होगा, भोग में होगा तो भोग लिए, योग में होगा तो योग लिए, ध्यान में मालूम पड़ा तो ध्यान लिए, भागने में मालूम पड़ा तो भाग लिए, काम में मालूम पड़ा तो काम को स्वीकार किया, क्रोध में मालूम पड़ा तो क्रोध करने लगे। ये बेचैनी है, ये परमात्मा को पाने के लिए। और हम उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये खोज हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक वो नहीं मिलेगा। लेकिन चीजें आपको मिलती हैं, आपको मालूम होना चाहिए वो कहां मिलती हैं। यदि सही स्थान का पता हो तो सही सभी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन सही स्थान का यदि आपको पता नहीं है तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आप अपने घर में जहां चीज रखी है वहीं आप खोजो तो मिलेगी, और यदि आपको वो जगह मालूम ना हो तो फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आप कितना भी खोज लो, आप कितना भी खोज लो, वो चीज वहां नहीं मिलेगी। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि भाई हिरण्यकश्यपु ने भगवान को कहां नहीं खोजा? अरे सब जगह पर खोजा, लेकिन उसने अपने में नहीं खोजा, अपने भीतर झांक के नहीं देखा। इसलिए लोग बोलते, भैया तुम अपने भीतर देखो, ऐसा बोलते कि नहीं? अरे तुम अपने को देखो भाई, अपने को, दूसरे को देखो मत, अपने को देखो। तो हम अपने को देखते नहीं है, हम दूसरे को देखते हैं, और हम हमेशा दूसरे को ही देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हम कितना भजन कर रहे हैं, हम ये जरूर देखते हैं कि सामने वाला कर रहा है कि नहीं। हम ये नहीं देखते कि हम कितने धार्मिक हैं, हम ये जरूर देखते हैं कि बगल वाला कितना अधार्मिक है। अच्छा, आपके अंदर सामने वाला कितना धार्मिक है ये देखने की रुचि है कि कितना अधार्मिक है ये देखने की रुचि है? आदमी में ये रुचि नहीं है कि वो आदमी कितना धार्मिक है, आदमी में ये रुचि है ये देखने की कि ये सामने वाला कितना अधार्मिक है। उसमें अपना कद ज्यादा मालूम पड़ता है। अच्छा, सामने वाला यदि ज्यादा धार्मिक मालूम पड़े तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? मेरे को तो लगता है अधिकांश तो अपने को ऐसा ही लगे, अरे साला ये तो हमसे ज्यादा है। आप ईर्ष्या करने लगेंगे, आप जलेंगे, आपके अंदर उत्कृष्टता का भाव पैदा नहीं होगा, लेकिन जब आप किसी में अधार्मिकता देखेंगे तो आप अपने भीतर से अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और फिर सामने वाले के प्रति घृणा कर, ये तो अधार्मिक है, छी 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 छी। तो आपकी जो रुचि है अपने को देखने की नहीं है, ये दूसरे को देखने की है। और आप कितना भी कोशिश करो दूसरे के अंदर झांक के देखो, आपको नहीं मिलेगा वो तत्व। इसीलिए आपको भागवत हिरण्यकश्यप के दृष्टांत के द्वारा ये समझाना चाहती हैं कि आप अपने में खोजो और अपने में खोजो, अपने भीतर अपने ही अंदर है। भगवान ने बोला है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। भगवान ने कहा कि भैया कौन सी अग्नि, अरे जठराग्नि, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं तुम्हारे भीतर वैश्वानर जठराग्नि बनकर बैठा हुआ हूं और ये खाए हुए पिए हुए सारे पदार्थों को मैं पचा देता हूं, आपके भीतर है। और भगवान ने कहा अहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में हूं, मैं सबके हृदय में, मैं ध्यान देना भगवान क्या बोल रहे। भगवान ने कहा कि वो जो मैं है ना, मैं आप दिन भर सुबह से शाम तक आप क्या करते हो, सबसे ज्यादा किस शब्द का प्रयोग करते हो, मैं आप सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा इसी शब्द का प्रयोग करते हो, मैं अरे भाई मेरे को। भगवान ने कहा कि वो जो मैं है ना, मैं अरे वो मैं ही तो मैं हूं, ये तत्वमसी। भगवान ने कहा वो जो मैं है ना, वही तो मैं, वो वही उसके अंदर वो मैं हूं। और भगवान भी बहुत मजेदार है, जो सबसे कीमती चीज है ना उसी पर भगवान का ध्यान रहता है। आपके दसवें अध्याय में, सातवें अध्याय में, ग्यारहवें अध्याय में विभूति योग का प्रतिपादन है। भगवान ने कहा कि नदियों में गंगा जी मैं हूं, हिमालय पर्वतों में हिमालय मैं हूं, मनुष्यों में राजा मैं हूं, वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं हूं, ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं, पशुओं में शेर मैं हूं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। एक किसी विदेशी विद्वान ने भगवद गीता पढ़ी और वो सोचने लगा कि देखो ये कैसा अहंकारी भगवान है। अरे बोले जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो बोलता कि मैं अरे गंगा जी पवित्र जो सदा वाहिनी है, भगवान वो बोल रहे मैं हूं। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, बोले राजा सत्ता का केंद्र मैं हूं। पशुओं में शक्तिशाली शेर भगवान ने कहा मैं हूं। गरुड़ वो बहुत भयंकर ऊंची उड़ान भरता है, बहुत शक्तिशाली है, बोले मैं हूं। और आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये दुनिया के जितने भी झगड़े हैं ना वो किसके झगड़े हैं, ये तो मैं को बचाने के झगड़े हैं, मैं अरे भाई मैं, मेरे को पहले होना चाहिए। आप सबसे ज्यादा वरीयता किसको देते हो, अपने जीवन में सबसे ज्यादा वरीयता दूसरे को देते हो कि अपने को देते हो? आप सामने वालों को कितना भी वरीयता दे, लेकिन आप दो नंबर होंगे कि वो सामने वाला दो नंबर होगा, सामने वाला दो ही ना, हमेशा आप एक नंबर होते हैं हमेशा। एक बार की बात है, कोई एक व्यक्ति रूस गया, महात्मा गांधी जी को बहुत मानता था, वहां एक कोई दार्शनिक हुए हैं, तो उनके पास जाके वो बातचीत करने लगे। महात्मा गांधी जी थे उस समय। उस व्यक्ति ने पूछा कि इस समय आपके दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, एक नंबर कौन है? वो आदमी दार्शनिक भी रूसी बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा कि भाई सच्ची बात सुनना चाहते हो कि झूठी बात सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा आप सच्ची सच्ची बात बताओ कि दुनिया में कौन है सबसे बड़ा इस समय। तो उन्होंने कहा बात सच्ची यदि कहूं मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूं, और तुम झूठ सुनना चाहते हो तो बोले महात्मा गांधी। उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई कोई भी आदमी अपने से बड़ा दुनिया में किसी को नहीं मानता है। दुनिया में कोई भी आदमी अपने से बड़ा दूसरे को मानता ही नहीं, भले वो बोल देता हो लेकिन आदमी को ऐसा लगता है ये थोड़ा कम जानता है। इसलिए आप कितने भी बुद्धिमान हो आपकी पत्नी आपको जरूर बता देती हो, तुम समझते नहीं हो। दुनिया में हर पत्नी अपने पति को बेवकूफ समझती है। डॉक्टर आप दुनिया में कितने भी बुद्धिमान हो, सारी दुनिया आपको क्यों न मानती हो, लेकिन पत्नी आपको कभी बुद्धिमान नहीं इसमें वो समझती है, ये ठीक है पढ़ा लिखा है लेकिन ये